मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 12 जून 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों फिलहाल हम लोग हार्ड वर्क पर बात कर रहे हैं और एक स्टूडेंट ने हार्ड वर्क के बारे में जानना चाहा था, उससे मैंने शुरुआत की थी और अब जबकि मैं इस विषय पर लगातार सोचता चला जा रहा हूं तो मेरे जेहन में कुछ नए नए तथ्य पैदा होते चले जा रहे हैं। और जब कोई नया तथ्य दिमाग में आता है तो सच पूछिए तो मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पाता कि मैं अपनी बात अपने प्रिय श्रोताओं तक पहुंचाकर अपने आप को हल्का कर लूं। तो दोस्तों हो सकता है कि किसी एक विषय पर इतने एपिसोड में बात किए जाने से आपके अंदर खींच की भावना पैदा हो रही हो कि सर इसको क्यों नहीं खत्म करते, हो गया अब हम समझ लिए हैं इसको आप कितना समझाएंगे। लेकिन यूं कह लीजिए कि ये मेरी अपनी मनोवैज्ञानिक मजबूरी है और मैं चाहूंगा कि आप मेरी इस मजबूरी को थोड़ा सा बर्दाश्त करें। तो दोस्तों आज भी मैं उसी विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, जब मैं हार्ड वर्क के बारे में और सोचने लगा और अपने अतीत पर नजर डालने लगा तो मुझे एक तथ्य पकड़ में आया, या यूं कह लीजिए कि समझ में नहीं आया, और वो ये कि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि देखिए मैं उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन में मैंने 5-5 साल 10 साल तक काम किए और जब आप वहां रहते हैं तो आप यूं कह लीजिए कि बहुत ही एक विशिष्ट सिचुएशन में रहते हैं। वहां रहने पर मैंने राजनेताओं के जीवन को देखा और समझा कि वो किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, जिसमें स्वयं राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी शामिल थे और भी जो दूसरे पॉलिटिशियंस थे उनके साथ आपको विदेश यात्राओं का मौका मिलता है, देश में आप जाते हैं तो आप उनकी कार्यप्रणाली को बड़े आराम से देखते और समझते हैं। इन कार्यालयों में जो अफसर भी होते हैं वो बहुत सीनियर अफसर होते हैं और नो डाउट कि उनके ऊपर काम की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा रहती है, और सच पूछे तो मैं उतना सीनियर तो नहीं था लेकिन काम की जिम्मेदारियां काफी थी। तो मैंने उनकी भी कार्यप्रणाली को देखा समझा, अपनी कार्यप्रणाली से तो मैं परिचित हूं ही, सच पूछे तो मैंने बहुत से उद्योगपतियों के जीवन को भी देखने और समझने की कोशिश की, उनकी बायोग्राफीज पढ़ी जिसमें नारायण मूर्ति जी सबसे प्रमुख हैं, तो उन्हें भी जानने और समझने की कोशिश में मैंने पाया कि हम जो बात हार्ड वर्क के बारे में कहते हैं वह बात उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमारे दिमाग में डाल दी गई है। यहां तक कि स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने देखा है, मेरे साथ एक स्टूडेंट पढ़ते थे जब मैं 9th क्लास में था, 9th तक ही 1 साल का मेरा उनका साथ रहा, जितेंद्र सिंह उनका नाम है और अंबिकापुर में वो बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, आज मेरे बहुत ही प्रिय मित्र थे। उनको मैं पढ़ता हुआ नहीं पाता था और सच पूछे तो उनके जो बड़े भाई साहब थे वो भी डॉक्टर थे, जब भी हम लोग उनके घर पर जाते थे तो उनके बड़े भाई हमेशा जितेंद्र की शिकायत करते थे कि ये कभी पढ़ता नहीं है और जरा सा इसको समझाया करो, और बहुत डांटते थे और यहां तक कि मार भी देते थे। वो युग दूसरा था, उस समय आप मारपीट कर सकते थे अपने से छोटों के साथ में। और दोस्तों मजेदार बात ये, यूं कह लीजिए कि आश्चर्यजनक बात मेरे लिए ये थी कि कहा जाता था कि वो पढ़ता नहीं है और लगातार उसकी पोजीशन फर्स्ट की होती थी, मेरी सेकंड की होती थी। चलिए फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क न हो, बशर्ते कि नंबर में थोड़ा ही फर्क हो, लेकिन मार्क्स नंबर जो हम लोग लाते थे उसमें बहुत बड़ा फर्क होता था, उनके बहुत अधिक नंबर होते थे। मैं भले ही सेकंड में रहूं लेकिन नंबर मेरे उसकी तुलना में बहुत कम होते थे, हालांकि डिवीजन फर्स्ट ही होती थी, 1 साल की बात है। तो सच पूछे तो मैं समझ नहीं पाता था कि भाई फिर मैं इतनी पढ़ाई करता हूं, अब इनके भाई साहब कहते हैं कि ये पढ़ता लिखता नहीं है यानी कि हार्ड वर्क नहीं करता, फिर भी कैसे यह इतने नंबर ले आता है। जब मैं अंबिकापुर में ही था तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वहां एक क्लब था और उसमें हम लोग टेनिस खेलते थे, तो मैं देखता था कि वो कलेक्टर साहब बकायदे आते थे हम लोगों के साथ टेनिस खेलते थे, ऐसा नहीं कि भागते भागते आए और एकदम भागते भागते जाए, अरे क्या हो रहा है, बड़े आराम से आते थे, आराम से बात करते थे, जब खेल खत्म हो जाता था तब भी थोड़ी देर तक बैठते थे, चाय वगैरह पीते थे, उसके बाद इत्मीनान से जाते थे। बाद में जब मैं राष्ट्रपति भवन में था तब वो बकायदे आए थे वहां मिलने के लिए, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। तो दोस्तों अलग अलग, शंकर दयाल शर्मा जी को मैंने देखा कि बहुत कूल काम रहते थे लेकिन उनके काम में कोई कमी नहीं थी, उनको बल्कि इसके लिए आप यूं कह लीजिए कि लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे कि सारे काम समय पर होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, लेकिन कभी मैंने उन्हें तनाव में नहीं देखा। इनफैक्ट सच पूछिए तो जिसे हम हार्ड वर्क कहते हैं वो हार्ड वर्क करते हुए मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। तो अब ये क्या है, हिदायतुल्ला जी के बारे में बताते हैं कि जब वाइस प्रेसिडेंट हाउस में थे तो वो अपने ऑफिस का चक्कर लगाया करते थे। उस समय तो 6 days वीक हुआ करता था। वो 5 बजे अपने ऑफिस, वहां घर और ऑफिस दोनों एक ही है उपराष्ट्रपति भवन में, 6 मौलाना आजाद में, तो 5 बजे के बाद अगर कोई वहां बैठा हुआ मिल गया ऑफिस में तो डांट करके उसको भगा देते थे। वो कहते थे कि इसका मतलब है कि तुमने दिन में अपना काम सही तरीके से नहीं किया है, अब ये जो तुम बिजली और पंखा चला रहे हो इसका खर्चा कौन देगा, तुम देगा, चलो बंद करो और जाओ। मतलब वो दूसरों से भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि आप हार्ड वर्क करिए। और हिदायतुल्ला साहब कोई छोटे मोटे हैसियत है नहीं, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तक रहे। तो दोस्तों फिर ये हार्ड वर्क है क्या, आप देखिए ये सब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में तो हार्ड वर्क की एक तस्वीर डाल दी गई है और वो तस्वीर हमें आतंकित करती, हमें परेशान करती है, सच पूछे तो हमें डराती है। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि बच्चा खेलने जाता है, आनंद से खेलता रहता है, ठीक है, पता लगा दिन भर वो खेल रहा है, क्या आप उसे हम कभी कहते हैं आप और हम कि बेटे तुम आज बड़ा हार्ड वर्क करके आ रहे हो, कभी नहीं कहते। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल प्लेयर है, वो 6 घंटे जाकर के प्रैक्टिस करता है, ग्राउंड में खेलता है, प्रैक्टिस करेगा तो खेलेगा भी, तो हम कहते हैं कि भैया वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है यार, कि किसी तरह से उसका सिलेक्शन नेशनल टीम में हो जाए, रणजी में हो जाए, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है भैया, वो भी तो खेल ही रहा है, बच्चा भी खेल रहा था, बच्चे को हम कहते नहीं हार्ड वर्क कर रहा है, और इस खिलाड़ी के लिए हम कह रहे हैं कि हार्ड वर्क कर रहा है। तो फिर ये हार्ड वर्क है क्या दोस्तों, सच में इस पर विचार किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके साथ एक नाइंसाफी हुई है इस शब्द के साथ, और नाइंसाफी हमने ये की है कि हमने काम को अपने जीवन से काट के अलग कर दिया है, काम को हमने अपने जीवन का हिस्सा नहीं माना है कि काम ही जीवन है या जीवन ही काम है, और अगर हम अपने जीवन में काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, बताइए क्या हम दिन भर सोए रह सकते हैं, क्या दिन भर हम खेलते रह सकते हैं, क्या हम दिन भर गप मारते रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ काम हम कर सकते हैं। तो चूंकि काम और जीवन को हमने अलग अलग कर दिया है, तो इसीलिए काम के बारे में एक हमारी धारणा बन गई है, और ये धारणा दुर्भाग्य से ये बनी कि काम करना जैसे कि कोई बोझ है, कोई अभिशाप है, इस तरह का लगने लगा है, जबकि वह एक तरह का वरदान होना चाहिए। कल्पना करके देखिए कि जब मैं बेरोजगार रहता हूं, मेरे पास कोई काम नहीं होता, तो मैं कितना परेशान होता रहता हूं कि बाप रे कैसे काम चलेगा, कैसे समय कटेगा, लोग क्या कहेंगे, मुझे तो काम चाहिए काम चाहिए, और जब काम मिल जाता है तो मैं कहता हूं कि हे भगवान काम करना पड़ रहा है। दोस्तों हम अपने जीवन के लिए भी तो ढेर सारे काम करते हैं, क्या 6-7 घंटे हम सोते हैं तो ये सोने का काम नहीं है, क्या हम भोजन करते हैं तो खाना खाने का काम नहीं है, बताइए क्या हम जब स्नान कर रहे हैं तो क्या स्नान करने का काम नहीं है, सब भी तो काम ही है ना, और ये छोटे छोटे काम है, भले ही छोटे ही काम हो लेकिन काम तो है, और इन सबको आप मिला दीजिए तो एक बड़े काम का रूप ले लेगा जिसे हम दैनिक कार्य कहते हैं। तो काम को चूंकि हमने अपने जीवन से काट करके एक अलग रूप में देखना शुरू कर दिया है, इसीलिए काम के प्रति जो हमारी धारणा है एक बोझ की धारणा बन गई है, एक अभिशाप की धारणा बन गई है, एक ऐसी धारणा बन गई है जो हम करना तो नहीं चाहते लेकिन हमें करना पड़ रहा है। दोस्तों जिस दिन हम अपनी इस धारणा को दुरुस्त कर लेंगे, मुझे लगता है कि उसी दिन सही मायने में हमें काम की जो भावना होती है, काम की जो परिभाषा होती है वो समझ में आएगी, और हार्ड वर्क जैसा जो शब्द होता है शायद हमारे दिमाग से निकल जाए, वर्क मीन्स वर्क, खत्म हो गई बात, काम एक विशुद्ध अपने आप में काम है और वह हमें करना है। और जिस दिन हमारा दिमाग इस तनाव से मुक्ति पालेगा, इस आतंक से अपने आप को अलग कर लेगा, उस दिन काम करने में जो आनंद आएगा सच पूछे तो वो जीवन का आनंद बन जाएगा, काम का आनंद इनफैक्ट जीवन का ही आनंद होता है। दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, आप सब अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अपने लोगों का भी ध्यान रखें, नमस्कार।